मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 7 जुलाई 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज न्यूज में डिस्कस करने के लिए हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैंने एक बहुत ही मुख्य विषय के रूप में एक बहुत ही इत्मीनान विषय को चुना है और वह विषय है प्री एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग की भूमिका, यानी कि प्री एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है उसमें जो किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है उसका क्या रोल होता है। और इसी संदर्भ में मैं थोड़ी सी बातें 2017 का अभी जो प्री का एग्जाम हुआ है उस पेपर की समीक्षा भी करना चाहूंगा। लेकिन मित्रों, इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं, कुछ बातें तो हैं जो आपसे मुझे करनी है। शुक्रवार का दिन होने के कारण कुछ सूचनाएं आप सबको देनी है। ये सूचनाएं खासकर उनके लिए हैं जो स्टूडेंट नए नए अभी afeis.com से जुड़े हैं। उन सबके लिए सूचना यह है फ्रेंड्स कि सैटरडे और संडे गस्टेड हॉलीडे होने के कारण, गस्टेड हॉलीडे का सरकारी छुट्टी कह लीजिए, गस्टेड हॉलीडे नहीं कहना चाहिए क्योंकि बहुत से राज्यों में सैटरडे काम होता है, सरकारी कार्यालय खुले रहते हैं, केंद्र सरकार की छुट्टी होने के कारण डेली ऑडियो नहीं आता है, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो आपको सैटरडे को मिलेंगी। सैटरडे को प्रेस क्लिपिंग्स मिलेंगी, संडे को प्रेस क्लिपिंग्स अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ मित्रों, संडे को छुट्टी चूंकि आपकी रहती है, उस दिन को पूरा करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए हम सैटरडे को कुछ और भी सामग्री आपको उपलब्ध कराते हैं। उनमें है योजना और कुरुक्षेत्र के दो यानी कि टोटल 4 आर्टिकल, दो योजना से, दो कुरुक्षेत्र से, और ये आर्टिकल हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही एक वीकली क्वेश्चन आपको दिया जाता है मेंस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए। और मैं यहां एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे ही आपको वीकली क्वेश्चन मिलता है, पढ़ते हैं, आप उस पर उत्तर लिखना शुरू न कर दें, बकायदे उसकी प्रिपरेशन करें। सप्ताह भर का समय आपके लिए है, बकायदे उस टॉपिक की तैयारी करें। तैयारी करने के बाद उत्तर के अनुसार अपने पॉइंट्स लिखें और पॉइंट्स लिखने के बाद फिर ड्राफ्ट करें, यानी कि उत्तर लिखने की कोशिश करें। और एक बार जब आप उत्तर लिख लेते हैं तो फिर उसे जांचें भी, खुद जांचें और देखें कि इसमें क्या क्या कमी रह गई है और उसे रीड्राफ्ट करें, फिर से लिखें और फिर उसे पढ़ें और देखें कि पहले उत्तर की तुलना में आपका अभी का जो उत्तर है वो बेहतर हुआ या नहीं हुआ। आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से होनी चाहिए, न कि इस तरीके से कि एक बार लिख दिया, मुक्ति पाली और छुट्टी हो गई। मित्रों, इसी के साथ ही हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, इन सूचनाओं के बाद अब मैं न्यूज पर थोड़ी सी बात करूंगा। बहुत ही सामान्य सी खबरें हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल की यात्रा करके और G20 की बैठक में भाग लेने के लिए, आपको मालूम है, जर्मनी के हैमबर्ग में पहुंच गए हैं। अब वहां बैठक होगी, बैठक में जो भी आउटकम होंगे उस पर हम लोग बाद में सोमवार को बातें करेंगे। G20 का जहां तक संबंध है, तो इसकी थोड़ी सी एक तरह से परिचयात्मक जानकारी मैं काफी पहले, 3-4 दिन पहले आपको दे चुका हूं, वो आपके ध्यान में होगा। अब हम मंडे को इस विषय पर देखते हैं, अगर कुछ विशेष बातें हुई तो इस पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एक नाम बताया था, हैफा, आपको याद होगा। अब मैं उसे दोहराऊंगा नहीं जानबूझकर, आप उसे याद करने की कोशिश करें। उसी से जुड़ा हुआ एक नाम है हमारे जो हैफा में नगर को, चलिए मैं बता ही दे रहा हूं। हैफा बेसिकली इसराइल का एक नगर है जिस 1918 में, जिस पर जर्मनी और टर्की की सेना ने, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के साथ अधिकार जिस पर कर लिया था, तो उसको छुड़ाने के लिए भारत से सैनिक भेजे गए थे। तो वहां एक स्मारक बना है हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में, उनकी स्मृति के रूप में, उसमें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे। और ये जो टीम गई थी, इसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर दलपत सिंह, ये उसका नेतृत्व कर रहे थे। वहां उनकी प्रतिमा भी लगी हुई है। तो यहां एक और नाम मैं ऐड करना चाह रहा हूं और वह नाम है मेजर दलपत सिंह जी का। या आपके दिमाग में कहीं हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं यानी कि आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे एग्जाम में भी आप अपीयर होते रहते हैं और होते भी रहना चाहिए, तो हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न वहां पूछ लिए जाएं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप अखबार में एक बहस सी की स्थिति देख रहे होंगे, चैनल्स पर भी ये दिखाया जा रहा है, और वो ये कि अभी जो वेस्ट बंगाल की जो स्थिति हो गई है ना, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। उसमें वहां के मुख्यमंत्री और जो वहां के राज्यपाल है उनको लेकर के थोड़े से विवाद की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल पर आरोप लगाया है कि वो उन्हें धमका रहे हैं, और राज्यपाल के जो सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये राज्यपाल पद की गरिमा के प्रतिकूल है कि चीफ मिनिस्टर उन पर इस तरह का आरोप लगा रही है। दोस्तों, ये जो मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल यानी कि दोनों के बीच के जो टसल का जो इतिहास है, ये अभी का इतिहास नहीं है, ये पहला ही राज्य नहीं है, बल्कि जब से देश आजाद हुआ है लगभग तब से ही इस तरह के द्वंद्व संकट परेशानियां पैदा होने लगी थी, लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, और इसीलिए संघात्मक स्वरूप के को लेकर लगातार ये सवाल खड़ा किया जाता है कि भाई राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कैसे हो, क्या चीफ मिनिस्टर से पूछकर राज्यपाल भेजे जाएं। लगातार राज्यपालों पर यह आरोप लगाते हैं कि वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में वहां काम करते हैं, राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, केंद्र सरकार उनका इस्तेमाल करती है वहां की अस्थिरता के लिए, मतलब एक राजनीतिक प्रयोग उसका उपयोग किया जाता है। इसको लेकर के एक लंबी बहस होती रही है, और ये जो बहस, ये टॉपिक जो है अपने आप में सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मित्रों, इस टॉपिक पर आपकी नजर होनी चाहिए, किताब से आप बकायदे तैयार करें कि जो राज्यपाल हैं उनकी पूरी की पूरी स्थिति, अपॉइंटमेंट से लेकर के अधिकार कर्तव्य तक की क्या है, ये जो विवाद है इसके भी इतिहास पर बकायदे लिखे गए हैं कि ये विवाद किस किस तरीके से हैं, किन किन मुद्दों पर लेकर के विवाद पैदा होते हैं, उन विवादों को सुलझाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, कुछ आयोग बैठाए गए जिसमें सरकारी आयोग सबसे प्रमुख है, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, फिर उनके रिकमेंडेशंस का क्या हुआ, अपनी तरफ से आप सोचने की कोशिश कीजिए कि और क्या उपाय हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह कि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है कि प्री एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग की भूमिका। दोस्तों, इससे पहले कि मैं सीधे सीधे अंडरस्टैंडिंग की भूमिका पर आऊं, थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं बताना चाहूंगा। इससे पहले भी मैं इस बात की चर्चा कर चुका हूं, लेकिन इसको एक कंप्लीट नोट अपने आप में तैयार करने के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस साल जो टोटल प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से 72 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, 72 क्वेश्चन फ्रेंड्स केवल चार सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इंटरनेशनल अफेयर। 72 क्वेश्चन जो अपने आप में बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, और इसमें से अगर इसी में अगर आप प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जोड़ देंगे जो 8 थे संख्या में, तो 80 क्वेश्चन इन्हीं से है। प्लानिंग को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो प्लानिंग के क्वेश्चन है कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। अब होता यह है फ्रेंड्स कि अगर आपको मैं ये कहूं कि 72 क्वेश्चंस इन चार सब्जेक्ट से आए हैं, राइट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इनसे चार क्वेश्चन 72 क्वेश्चन आए हैं, और किसी भी साल 60% से क्वेश्चन इन चारों से नहीं है, 60% तो आते ही आते हैं, तो मित्रों स्वाभाविक है कि आपके दिमाग में ये आएगा कि इन चारों सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। यस, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जो अभी मैंने शब्द इस्तेमाल किया बहुत अच्छे से, तो उस बहुत अच्छे से का क्या मतलब है? पूरी किताब पढ़ जाए क्या वो बहुत अच्छा है? उसमें जितनी इंफॉर्मेशन है उन सबको हम रट जाए क्या वह बहुत अच्छे से तैयारी है? ज्यादा से ज्यादा राइटर्स की किताबें पढ़ें क्या वह बहुत अच्छे से तैयारी को हमारे परिभाषित करती है? काफी घंटे रोज लगाएं, कई सालों तक तैयारी करें क्या तब हमारी बहुत अच्छे से तैयारी होगी? मतलब उसकी परिभाषा क्या है, उसकी सीमाएं क्या है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है मित्रों, बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है और स्पेशली आईएएस की तैयारी के लिए। इसलिए होता यह है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे स्टूडेंट, जैसे मैं अगर टीना डॉबी की बात करूं, तो टीना डॉबी ने जो ऑप्शनल लिया था वो पॉलिटिकल साइंस उनका था एंड इंटरनेशनल रिलेशन उनका, और मेंस में ऑप्शनल में यानी कि इसी सब्जेक्ट में उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे, नियर अबाउट 60% से अधिक मार्क्स मिले थे। लेकिन उन्हीं को जब आप जनरल नॉलेज में देखते हैं, जो आपका मेंस का सेकेंड पेपर है, उसमें उनके बहुत कम है, उसमें वो 40% मार्क्स तक नहीं पहुंची है। अब देखिए कि पॉलिटिकल साइंस पर उनकी बहुत अच्छी तैयारी है, नो डाउट, तभी वो मेंस में इतना नंबर लेकर के आई है, अदरवाइज संभव नहीं। 60% नंबर लाना आईएएस में मेंस में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो फिर वो जनरल नॉलेज में क्यों नहीं ला पाई, उनके पास इंफॉर्मेशन थी, सारी चीजें तो थी। तो मित्रों यही अंतर आपको समझना होगा बहुत अच्छी तैयारी का। मेंस में जब हम बहुत अच्छी तैयारी की बात कहते हैं तो वो एनालिटिकल पावर होता है जो उनके पास बहुत अच्छी थी, राइट। प्री में जब हम तैयारी की बात करते हैं, प्री में, तो प्री में हो जाता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। मैं यहां टीना डॉबी के प्री के में पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें तो सब्जेक्ट के आपको नंबर अलग से मिलते नहीं है, वो तो टोटल मार्क्स होते हैं। लेकिन उसी मेंस में आप देखिए कि जो सेकेंड पेपर है जनरल स्टडीज का, जब उसमें वो जाती हैं तो उसमें कमजोर पड़ जाती हैं, वहां मार्क्स नहीं लेकर के आती। जबकि जो जनरल स्टडीज का है पेपर जो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसमें फिर एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, एक क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत होती है। जब आप उसी को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो शायद अंडरस्टैंडिंग की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जितनी कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जरूरत होती है। तो उनके पास क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो था, समीक्षात्मक शक्ति तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी कमी रह गई थी, या यू भी आप कह सकते हैं कि अगर अंडरस्टैंडिंग होगी भी तो उसको करंट से शायद वो जोड़कर उतना नहीं चल पाई होंगी। और ये केवल टीना डॉबी की बात नहीं है, बल्कि अभी मैं एक स्टूडेंट की मार्कशीट देख रहा था जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी रही है, 31-32 रैंकिंग है, जिन्हें हिंदी के टॉपर के रूप में बताया जा रहा है, आई डोंट नो, लेकिन 30th अगर रैंकिंग है तो अपने आप में बहुत अच्छी रैंकिंग है, राइट। उनके मैं देख रहा हूं कि ऑप्शनल में बहुत अच्छे सब्जेक्ट नंबर हैं, उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत अच्छा ही नहीं है बल्कि मेंस के जो चार पेपर है उसमें से तीन के बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं फिर देख रहा हूं कि जो सेकेंड पेपर है जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है उसमें कम है। तो मित्रों ये मैं आपको इसलिए खासकर ये पृष्ठभूमि मैंने बताई है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी को डिफाइन कर सके, समझ सके कि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से नहीं है, उसका मतलब ज्यादा से ज्यादा किताबों से नहीं है, ज्यादा से ज्यादा रटने से नहीं है, बल्कि दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो मित्रों इसी को आधार बना करके मैंने जो सिविल सर्विस के जो अभी 2017 के एग्जाम हुए हैं उनको थोड़ा सा अलग तरीके से एनालाइज किया। इस रूप में मैंने एनालाइज किया कि उसके जो कुछ प्रश्न हैं वो आसान किस्म के हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत कम है, 100 में से 12-13 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें हम आसान में मान सकते हैं। आसान से थोड़े से कठिन, तो ऐसे प्रश्नों की संख्या लगभग 20-22 है, राइट, जिनको हम वाकई में कठिन कहेंगे, जिनको सॉल्व करना आसान नहीं है, जिसकी तैयारी इनफैक्ट नहीं की जा सकती, ऐसे प्रश्नों की संख्या 20-21, ऐसे भी प्रश्नों की संख्या 20-21 है दोस्तों। लेकिन ऐसे प्रश्न जो आपसे अंडरस्टैंडिंग की मांग करते हैं, ऐसे प्रश्नों की भी संख्या लगभग इतनी ही है, 19-20। और ये जो अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चन हैं जिनकी संख्या लगभग 20 है, यानी कि आप समझिए कि 20% जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके उत्तर आपको सीधे सीधे किताब में नहीं मिलेंगे, किताब में मिलेंगे ही नहीं। किताब में इन प्रश्नों के उत्तर के आधार तो मिल जाएंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। और इसके बाद मित्रों जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे वो कॉमन सेंस पर आधारित पूछे गए थे, जिनकी संख्या लगभग 25 के आसपास है। देखिए कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग में फर्क है, यहां दोनों को आप बिल्कुल एक मानकर बिल्कुल ना चले। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, खासकर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन को लेकर के, कि जब मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कह रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब क्या है। मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं फ्रेंड्स, केवल इस क्वेश्चन को आप सुने और सुनने के आधार पर आप अंदाजा कर लेंगे कि इसका जो उत्तर है वो आप कैसे देंगे, कॉमन सेंस के आधार पर देंगे, अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होगा ये, या आपको सीधे सीधे किताबों से इसके उत्तर मिल जाएंगे, क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे, है ना। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ये सेट डी का क्वेश्चन नंबर 42 है, प्री का। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संविधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। बी, विधान मंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। सी, न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। डी, न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। आप सबकी सुविधा के लिए फ्रेंड्स मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ रहा हूं। In India, judicial review implies A. the power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders. B. the power of the judiciary to question the wisdom of the law enacted by the legislatures. C. the power of the judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the president, and the D, the power of the judiciary to review its own judgments given earlier in similar or different cases. मित्रों, इसमें judicial, जिसे हम न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं, इसके बारे में पूछा है। लेकिन आप देखेंगे कि जो चार options दिए गए हैं, उन चार options को इस तरीके से frame किया गया है जो आपको थोड़े से द्वंद में डाल देगा। अब आप इस द्वंद से बचेंगे कैसे, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सीधे सीधे तो इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि यहां तक कि अगर आप इसकी परिभाषा को भी पढ़ लेंगे कि जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं, तब भी हो सकता है कि आप इसमें फंस जाएं, क्योंकि वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ करके कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द लेकर के आएंगे, ऐसे ऑप्शन लेकर के आएंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप गड़बड़ा जाएं, और फिर वो देखेंगे कि इस गड़बड़ी की स्थिति में आप सच में अपने आप को कितने अच्छे तरीके से बचा पाते हैं। और यह बचाव होता है मित्रों तब जब हम किसी भी विषय की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रश्न आसान है, जो मध्यम श्रेणी के हैं, उसे तो लगभग हर स्टूडेंट कर ही लेता है, उतना स्कोर तो किसी का भी आ ही जाता है जो साल डेढ़ साल से दो साल से तैयारी कर रहे हैं। जो माइलेज आपको मिलती है वो कहां से मिलती है, जो बहुत कठिन क्वेश्चन है जो मैंने तीसरी श्रेणी के बताए, वो फिर किसी बहुत कम लोगों के बस की बात नहीं है। किसी का कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो वो कठिन वाला कर लेता है, तो वहां सेम प्लेइंग फील्ड है, आपके लिए कोई कठिन है तो दूसरे के लिए वही प्रश्न सरल हो जाता है, तो वहां मामला जो पूरा का पूरा बराबर सा बैठ जाता है। जो अंतर आता है सच पूछिए तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन और कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन में ही आता है कि यह किसका कितना अच्छा है, और ये दोनों तथ्य, जिस दोनों चीजें जिसकी जितनी अच्छी होंगी उसका स्कोर उतना ही ज्यादा हाई हो जाएगा। मुझे एक स्कोर जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक स्टूडेंट ने जो मेंस में सेलेक्ट हो गए और जिनके बहुत अच्छी रैंकिंग है, मुझे पता लगा कि प्री में ही स्कोर उनका 72% था। प्री का 72% का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है, जहां निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो मित्रों, यह है अंडरस्टैंडिंग की भूमिका, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि कॉमन सेंस की भी भूमिका। आगे चलकर हम फिर कभी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कॉमन सेंस क्या है, इस पर बातें करेंगे। अब समय चुकी हो चुका है मित्रों, तो आज के इस विषय को यहीं तक अब सीमित रखना बेहतर होगा। तो दोस्तों, मैं आज अखबारों की आपको कुछ क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो क्लिपिंग्स आप लोग देख लेंगे, और अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो नौजवान साथियों के स्वागत करने का चरण है। तो मित्रों, मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं आयुष शर्मा, आप शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं, सागर कोचे, आप कांकेर छत्तीसगढ़ से हैं, और अंशुल मालवीय भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं आप सबसे दो दिन के लिए इजाजत चाहूंगा। बीच के ये दो दिन आप सबके लिए बहुत ही सुखकर हों, बहुत ही प्रिय हों और ऊर्जा प्रदान करने वाले हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।